आरव को फैज का सच पता चलने के साथ छवि के बारे में भी पता चल गया था। छवि सिंघानिया फैज से मिलने गई थी, ये सुनने के बाद आरव काफी गुस्सा हो गया। उसने छवि को कॉल करके उसे खुद से और आयु से दूर रहने को कहा। छवि से बात करने के बाद आरव ने कबीर की तरफ देखकर पूछा, वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है ना? हाँ, मैंने आयान को उस पर नजर रखने को कहा है, वो वहीं है और उसने बताया कि फैज अपने रूम में रेस्ट कर रहा है, कबीर ने बताया। वो आयान से फैज के हर मोमेंट की खबर ले रहा था। रात से वो आयान को हर घंटे कॉल करके फैज के बारे में पूछा रहा था। आरव ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो फैज खान है, हॉस्पिटल रूम से भी गायब हो सकता है। हो सकता है ऐसा पहले मुमकिन हो, लेकिन अब नहीं है, वो हमारी नजरों में आ गया है और अब हमारी इजाजत के बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसे तो खबर तक नहीं, उसे हॉस्पिटल रूम में होस्टेज बना लिया गया है, कबीर ने हल्का मुस्कुराकर कहा। ठीक है, फिर मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। रूम का सिक्योरिटी एरिया खाली करवा देना और सीसीटीवी फुटेज बंद कर देना। अब जो बातें होंगी वो आमने सामने बैठकर होंगी, आरव ने सर्द आवाज में कहा। कबीर को आरव का अकेले फैज से मिलने जाना सही नहीं लगा। उसने आरव को रुकने के लिए कहा, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ना ही कोई आम सा गुंडा। आप अच्छे से जानते हो कि एजाज खान की पावर अगर बढ़ी है तो वो फैज की वजह से है। हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और मैं आपको अकेले उसके पास नहीं जाने दूंगा। कबीर की बात सुनकर आरव के चेहरे पर कड़वाहट बड़ी मुस्कुराहट थी। उसने उसी लहजे में कहा, वो थोड़ा ही सही लेकिन इंजर्ड है। दूसरी बात, तुम मुझे भी हल्के में मत लो। उसने जो किया है उसके बाद स्पेशल ट्रीटमेंट तो बनता है। तो क्या आप उसे जान से मार डालोगे? कबीर ने हैरानी से पूछा। अगर आरव ऐसा करता तो पूरे अंडरवर्ल्ड में हड़कंप मच जाता। मुझे खान को अपना दुश्मन नहीं बनाना है, पहले ही वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता है। ऊपर से मिसेस खुराना भी उसके यहाँ फंस चुकी है। चिंता मत करो, मारूंगा नहीं, पर उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि वो जिंदा रहकर भी जीने लायक नहीं बचेगा, आरव ने जवाब दिया, जिससे कबीर समझ गया कि उसने पहले से ही इस बात की प्लानिंग कर रखी है कि फैज के साथ क्या करना है। कबीर ने उसकी बात पर हामी भरी। आरव ने कबीर की तरफ देखा और फिर कहा, 15 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। आयु के नीचे आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर तुमने इससे ज्यादा टाइम लगाया तो मैं अकेले चला जाऊंगा। फिलहाल मैं दादी से बात करने जा रहा हूँ। कबीर को तैयार होने का बोलकर आरव गौरवी जी के पास गया। एज यूजुअल वो किचन में थीं और ब्रेकफास्ट तैयार करवा रही थीं। आरव ने कोई भी काम करने से मना किया हुआ था, लेकिन फिर भी ये छोटे मोटे काम करके उन्हें अच्छा लगता था। गौरवी जी ने जब आरव को किचन में देखा तो वो पहले ही बोल पड़ी, देखो मैं यहाँ कोई काम नहीं कर रही हूँ, बस इन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। मुझे इनके साथ बातें करना अच्छा लगता है। अब पूरे दिन बिस्तर में तो नहीं पड़ी रह सकती ना। गौरवी जी को लगा कि आरव किचन में रहने के लिए उन्हें डांटेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही इस बात की सफाई दे दी। आरव ने उनकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान फैज में लगा था। उसने सिर हिलाकर कहा, आप जो करना चाहे वो कर सकती हैं दादी, मुझे इस तरह एक्सप्लेनेशन मत दिया कीजिए। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, आयु की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल जाने की जिद करेगी, लेकिन आप उसे कहीं मत जाने देना, उसके हाथ की चोट लगी हुई है। आयु के चोट लगने की बात सुनकर गौरवी जी घबरा गईं। उन्होंने जल्दी से पूछा, तुम दोनों आजकल कर क्या रहे हो? कभी तुम्हें चोट लगी होती है तो कभी उसे, और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? बोलते हुए उन्होंने गुस्से में आरव को देखा। ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल चोट है, पर मैं नहीं चाहता कि वो हॉस्पिटल जाए। प्लीज आप उसका ध्यान रखिएगा और मैं निकल रहा हूँ, आरव ने जल्दबाजी में कहा और तुरंत वहां से चला गया। जाने से पहले उसने एक बार आयु से बात करने की सोची। कबीर अब तक आया नहीं था और वो कबीर के बिना हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता था। आयु बाथरूम से बाहर निकली है या नहीं ये क्रॉस चेक करने के लिए आरव रूम में गया। आयु अभी भी बाथरूम में थी, ये देखकर उसने राहत की सांस ली। मिसेस खुराना, अब क्या पूरा दिन यहीं पर रहने का इरादा है? कितना टाइम लगेगा तुम्हें? मुझे भी तो फ्रेश होना है, जब से तुम आई हो मुझे किसी और रूम का वॉशरूम यूज करना पड़ता है, आरव ने तेज आवाज में कहा। उसने ऐसा इसीलिए बोला था ताकि ये पता लगा सके कि आयु को आने में कितना टाइम लगेगा। आयु ने अंदर से कहा, तो आज भी जाकर कोई और वॉशरूम यूज कर लो ना, मुझे आने में टाइम लगेगा। मेरे हाथ पर चोट लगी हुई है और दर्द भी हो रहा है, सोचो कितनी तकलीफ हो रही होगी हर एक चीज करने में। तुम कहो तो मैं अंदर आकर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। देखो मैं कोई गैर नहीं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड ही हूँ, आ जाऊँ क्या अंदर? आरव ने दरवाजे के पास आकर पूछा। आयु ने जल्दी से जवाब में कहा, नहीं मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है तो जाकर कोई दूसरा वॉशरूम यूज कर लो, मुझे टाइम लगेगा। ओके, एज यू विश, आरव ने कहा। उसके फेस पर ईविल स्माइल थी। आरव के इरादों से अनजान आयु को ये सब नॉर्मल लग रहा था। आयु ने अगर टाइम लगने का कहा है तो उसे सच में काफी टाइम लगने वाला था। आरव ने वार्डरोब से अपने कपड़े निकाले और पास ही के रूम के वॉशरूम में चला गया। 15 मिनट के अंदर वो तैयार होकर बाहर आ गया था। उतने में कबीर भी तैयार हो चुका था और उसके बाद उन्होंने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। वो दोनों फैज से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। आयान ने अंदर पहले ही सारे इंतजाम कर रखे थे, उसने फैज के कमरे के आसपास के वीआईपी रूम्स को खाली करवा दिया था। हॉस्पिटल के वीआईपी एरिया में पहुंचने के बाद वो तीनों फैज के कमरे के आगे खड़े थे। आरव के अंदर जाने से पहले अयान ने कहा, आप श्योर हो ना कि आप अकेले अंदर जाना चाहते हो? आपने बताया था कि वो आदमी माफिया है, वो आपको चोट पहुंचा सकता है। अयान के बाद कबीर ने कहा, आप उसके साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं, पर हमें अंदर तो आने की परमिशन दे दीजिए, हम चुपचाप वहां खड़े रहेंगे। वो दोनों ही नहीं चाहते थे कि आरव अकेले फैज के कमरे में जाए। दोनों चुपचाप यहीं पर खड़े रहो, मैं अपने आप देख लूंगा, आरव ने सख्त लहजे में कहा और फिर रूम के अंदर चला गया। उसने रूम अंदर से लॉक कर लिया था। फैज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा था। जैसे ही उसने आरव को अपने सामने देखा, उसके फेस पर ईविल स्माइल थी। उसने अपनी प्लेट साइड में रखी और हाथ बांधकर आरव के सामने खड़ा हो गया। आरव उसके पास आया। फैज ने भौहें उठाकर पूछा, बहुत जल्दी पता लगा लिया। वैसे आपके लिए मुश्किल कहां होने वाला था मिस्टर खुराना, आखिर आप भी तो हमारी दुनिया से ही हो। क्या आपकी वाइफ जानती है कि आपकी असलियत क्या है? खैर उसे जाने देते हैं, वो ठीक तो है ना? फैज जानबूझकर आरव को उकसा रहा था। उसका पाला आरव से पहली बार पड़ा था। वो ये नहीं जानता था कि आरव इस मामले में काफी अच्छा है। वो खुद के गुस्से को काबू करना अच्छे से जानता था। आरव ने फैज की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, उल्टा उसके फेस पर स्माइल थी। आरव को मुस्कुराता देखकर फैज ने कहा, तो मिसेस सिंघानी आपके बारे में बिल्कुल सही कहती हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, आपको वही करना होता है जो आप सोच कर आए होते हैं। अब यहां तक आ गए हैं तो बता दीजिए कि क्या सोच कर आए हैं। तुम खुद गेस क्यों नहीं कर लेते फैज खान, आरव ने भौहें उठाकर कहा।
फैज ने कुछ पल के लिए कोई जवाब नहीं दिया। वो आरव के चेहरे को गौर से देख रहा था। वो चाहकर भी फैज आरव के चेहरे के एक्सप्रेशंस पढ़ नहीं पा रहा था, तो उसने इरिटेट होकर कहा, जरूर ये कहने आए होंगे कि मेरी वाइफ से दूर रहना। रोहन चौहान ने जो भी किया उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो इनोसेंट है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों के बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। फैज के बात सुनकर आरव जोर से हंसा और फिर अचानक ही अपनी हंसी रोककर सीरियस टोन में कहा, मैं तुम्हें ये सब क्यों कहूंगा कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो? मैं कहने में नहीं करने में यकीन रखता हूँ फैज खान। मैं जो करूंगा मुझे यकीन है उसके बाद ये नौबत ही नहीं आएगी कि तुम मेरी वाइफ के आसपास भी फटको। फैज पर आरव की बातों का कोई असर नहीं पड़ा। आरव जिस तरह नॉर्मली बात कर रहा था उससे फैज को लगा कि वो उससे आसानी से डील कर सकता है। उसने आरव के सामने एक ऑफर रखते हुए कहा, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, हमें आपकी बेगम साहिबा से प्यार हो गया है। आप हमारे बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन हम खुद ही बता देते हैं कि एक बार जो हमें पसंद आ जाता है उसे हम अपना बनाकर ही रहते हैं। पहली बार किसी को देखकर वो वाली फीलिंग आई है तो हम इतनी आसानी से अपने कदम पीछे कैसे ले सकते हैं? प्रॉमिस करते हैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। आप जो चाहे वो मांग सकते हैं। आपको छवि सिंघानिया की बर्बादी चाहिए तो हम उसे एक झटके में बर्बाद कर सकते हैं, आपकी तरह टाइम नहीं लेंगे। बदले में आपको आपकी वाइफ हमें देनी होगी। कहिए मंजूर। फैज की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ा जो कि आरव ने मारा था। एक ही पंच में फैज के होठों के कोने से खून निकलने लगा था। फैज ने अपने होठों के किनारों से खून पोंछा और हंसते हुए कहा, हमें आपसे इस इमेच्योरिटी की उम्मीद नहीं थी। आप तो किसी कॉलेज बॉय की तरह लग रहे हो जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दूसरे लड़कों से लड़ाई करने के लिए आता है और ये कहता है कि उससे दूर रहना, वो सिर्फ मेरी है। इसमें कोई शक है क्या फैज? वो सिर्फ मेरी ही है और मेरी ही रहेगी। उसकी इतनी गलतियों के बावजूद मैंने उसे खुद से दूर नहीं जाने दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ आकर मुझसे कुछ भी बकवास करोगे और मैं उसे छोड़ दूंगा? तुम्हारी छवि सिंघानिया को मैं एक झटके में बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन जो मज़ा किसी को तड़पाने में आता है वो आसानी से जान लेने में नहीं आता। बताने से कुछ नहीं होगा, तुम भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे तब पता चलेगा, आरव ने ईविल स्माइल करते हुए जवाब दिया। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई उसने अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकाला और फैज की गर्दन में घोंप दिया। फैज अभी भी हैरानी से आरव की तरफ देख रहा था। वहां से जाने से पहले आरव ने कहा, बहुत शौक है ना मेरी वाइफ के पास रहने का, मैंने तुम्हारा ख्वाब पूरा कर दिया। 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में आए थे और अब देखो परमानेंट यहीं पर सेटल कर दिया। दूर से देखने में कोई बुराई नहीं है फैज, मेरे मिसेस खुराना है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी ऐरा गैरा उसे देखकर उसे पाने के ख्वाब देखने लगता है। जरूरी नहीं कि हर ख्वाब पूरा हो। चलिए मिस्टर खान चलते हैं, और आपको इस बात के लिए हमें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है कि हमने आपके दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी। आरव जान कर फैज के टोन में बात कर रहा था। उसके फेस पर ईविल स्माइल थी और वो उसे बाय बोलकर वहां से चला गया। फैज को अभी भी समझ नहीं आ रहा था आरव ने उसके साथ आखिर किया क्या था। वो बैठा जरूर था लेकिन ऐसे लग रहा था कि वो अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा था। आरव ने अपना बदला ले ही लिया। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकल कर बाहर आता है। पढ़कर लाइक और कॉमेंट कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।